बहनों और भाइयों, ये पांचवा रुकू है, 10 आयात है, 51 50 से लेकर 60 तक 11 आयात है, और पूरा एक जो है वो मजमून है। और ये मजमून, जैसे आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि ये आद की कौम, आद जो है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनके बारे में है। और आप देख रहे हैं कि ये अब ये कससुल अंबिया, कससुल नबीजीन का एक सिलसिला है जो चल रहा है, और इस सिलसिले में पहले बहुत तफसीली जो है वो तकरीबन 2-3 रुकूओं पर मुश्तमिल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत तफसील के साथ बयान किया गया। और अब जो है आद का किस्सा, कौम आद का किस्सा जो है बयान किया जा रहा है, या कौम हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो बयान किया जा रहा है। तो हम चूंकि इसका नया सबक है और पूरा एक नया डिस्कोर्स है, इसके पीछे कंटिन्यूशन तो वही थी जो नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा था, तो हम सबक की तरफ आते हैं। वह इला आदन, और आद की तरफ, तो वो बात देखेंगे, ये अब सिलसिला चल रहा है, तो तकरीबन 3 रुकू पहले एक बात जो बताई गई थी, वह इला उसका था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो था हजरत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने नूह की कौम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। अब जो है वो जो अरसला है अल्लाह ताला, वो उसका जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे मुराद वह इला की तरफ, आदिन आद की तरफ, तो असल में है कि आद की तरफ अरसला अलैना, अरसलना अलैना, हमने आद की तरफ भेजा। तो जो है आद ये कौम थी, ये दो तारीख में दो आद जो है मशहूर है, एक आद उला और फिर आद सानी। आद उला जो थे वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, और आद सानी जो थे ये बाद में जो ये अमालका के नाम से, ये जो अरब इन्हें जो है, ये कुरान मजीद के अंदर भी इन्हें जब्बारीन कहा गया है, तो ये वो अमालका थे, बाद में बड़े जो है वो बड़ी मशहूर कौम थी, और ये जो है बड़ी शफाक कौम थी, और बड़े लहीम शहीम, और इनके जिक्र आया है बनी इसराइल के जिक्र के सिलसिले के अंदर भी। तो ये जो यहाँ मकाम है कुरान मजीद का, ये पहले आद का जिक्र है जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर मौजूद थे। और ये आपको अगर याद होगा, हमने सूरह आराफ के अंदर पढ़ा था कि जो अरबों की पहली जो कौम थी, अरब बायदा जो थे, एक्सटेंट अरब जिन्हें आप कहा जाता है, जो बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो गए, वो अरब जो है ये असल अरब थे और पुराने अरब थे। ये अखाहुम, अखा भाई, हुम वो, उनके भाई हूद, और उनके भाई हूद को भेजा। ये जो अख जो होता है भाई के लिए आता है, और उनके भाई से मुराद है कि उन्हीं की कौम के एक फर्द को भेजा, जाहिर इसलिए कि कोई ऐसा शख्स जो उनकी जबान बोलता हो और वही उनकी जो है उनको बात को समझाए, तो वही जो है उस पैगाम की हुज्जत को तमाम कर सकता है। इसीलिए तमाम पैगम्बरों को जो है उनकी कौमों में से, या उनकी जबान बोलने वालों ही में से जो है वो भेजा गया। काला, उसने कहा, यानी किसने कहा, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम उबुदुल्लाह, या कौम, ये असल में या कौम ये है, ये या कौमी है, तो जुड़ने की वजह से इसको इजाफत कहते हैं, जुड़ने की वजह से फिर जो या है, जो फर्स्ट पर्सन का जो या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का, वो जो है वो हजफ हो गया है, तो या कौमी बन गया, ए मेरी कौम, ए बदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम, मा लकुम, मा का मतलब है नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, मिन इलाहिन, कोई भी इला, उन इलाहों में से कोई भी इला, गैरुहू उसके अलावा, उसके अलावा तो कोई भी जो है माबूद नहीं, इन अंतुम नहीं हो तुम, इन जो है देखिए इल्ला के साथ आ रहा है ना, तो नहीं के मानी देगा, वैसे तो इन का मतलब अगर होता है, लेकिन अगर ये अल्लाह के साथ आए तो फिर नफी के मानी देता है, इन अंतुम नहीं हो तुम इल्ला मगर मुफ्तरून, इफ्तरा करने वाले, यानी झूठ करने वाले, तुम नहीं हो मगर ये झूठ करने वाले। तो झूठ किस चीज में करते थे, कि जाहिर है ये जो अपना जो शिर्क करते थे, जो उन्होंने खुदा बनाए हुए थे, तो इनके कमोबेश भी ऐसे ही खुदा बने हुए थे जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बना रखे थे बहुत सारे बुत, तो उनको अपना शरा, उनको अपना देवता खुदा कह मानते थे, तो उस बारे में कहा गया कि ये तुमने झूठ कह रखे हैं सब, मुफ्तर मुफ्तर मुफ्तरिन जो है ये इफ्तरा से बाब फायल होता है, मुफ्तरिन तो उसकी जमा मुफ्तरून है, झूठ गिरने वाले प्लूरल। या कौमे, फिर उन्होंने ये कंटिन्यूस है, वो कहते हैं ए मेरी कौम, ला असअलुकुम, मैं नहीं मांगता तुमसे, मैं नहीं सवाल करता। असला जो है, असला साला यसलो जो है वो है सवाल करना, मैं नहीं सवाल करता तुमसे, मैं नहीं मांगता। अलैहि अजरन, इस पे कोई अजर, कोई सिला। इन अजरिया इल्ला, इन अजरिया, फिर वो देखो, फिर वो इनके साथ इल्ला आया, तो यहां भी नफी के माने हो गए। इन अजरिया, नहीं है मेरा अजर। अजरिया में या जो है फर्स्ट पर्सन, उसके लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, मैं, मेरा, नहीं है मेरा अजर इल्ला मगर, अल्लज़ी, अला ऊपर, अल्लज़ी उसके, उस जात के, फतरनी, फतरा यफ्तरो जो है वो पैदा करना, तो फतरा यफ्तरो फतरन पैदा करना, उस पे है, उस जात पे है जिसने मुझे पैदा किया है, वो मुझे अजर देगा। और इसी से फातिर है, आपको पता है फातिर का मतलब होता है जो है पैदा करने वाला, अल्लाह फातिर समावाते वाला, अल्लाह तमाम जमीन व आसमानों का पैदा करने वाला है। अफला ताकिलून, अफला जो है ये तीन पे हरूफ है, इसके तीन अल्फाज पे मुश्तमिल है, ये तीन हरूफ भी कह सकते हैं, तीन अल्फाज भी कह सकते हैं। आ क्या, फला पा पस, ला नहीं, क्या न, पस नहीं, ताकिलून तुम अकल करते, या तुम क्या अकल से काम नहीं लेते। या कौम, ए मेरी कौम, आगे जो है फिर इससे फिर जोड़ा जाएगा, इस तगफरू, इस्तगफिरू, ऐ मेरी कौम इस्तगफार करो, रब्बकुम अपने रब से माफी चाहो, यानी अपने रब से, अपने की तरफ इस्तगफार करो, अपने रब से इस्तगफार करो, अपने रब से माफी चाहो। तुम, और उसके बाद फिर तूबू, तौबा करो। अब देखिए ये दो अलग अल्फाज हैं, तौबा और इस्तगफार, इलैही है उसकी तरफ, यानी उसी की तरफ वापस पलटो। तो ये जो पहले भी हम इसका फर्क बताते चले, जो इस्तगफार ये है कि गुनाहों की माफी चाहना, तूबू ये है ताबा जो तूबू लौटना, अल्लाह ताला की तरफ वापस लौट आना, यानी गुनाह की जिंदगी को, गुनाह को छोड़कर अल्लाह ताला की इताअत में आ जाना और अहद करना कि वो गुनाह नहीं करेगा, ये तौबा है। युरसिल समाओ, युरसिल, युरसिले जो है वो भेजेगा, समाओ आसमान को, आसमान को भेजेगा। अच्छा अब देखिए, पहले आप जो है ये अजीब सा तर्जुमा बनता है कि वो आसमान को भेजेगा, लेकिन जाहिर है ये अरबी का उसलूब है, अरबी का जो है वो इसी तरह ही कंपोजिशन बनती है, लेकिन हमें जो है वो पहले दोनों तर्जमे, एक तो बिल्कुल जो लफ्जी तर्जमा है उसको भी जान लेना चाहिए और उसके मफहूम को भी। युरसिल समाए, वो भेजेगा आसमान को, मतलब है वो आसमान से भेजेगा, यानी अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिद्रारा, मिद्रारा हम दूसरी मरतबा इस लफ्ज को पढ़ रहे हैं, मिद्रारा जो है मूसलाधार, लगातार होते हुए, मूसलाधार होते हुए। अच्छा ये जो मूसलाधार का लफ्ज है, ये जाहिर है लगातार के मानों के अंदर तो आता है, लेकिन ये सिर्फ बारिश के लिए आता है। आपको पता है कि मैं ये, हम नहीं कह सकते मैं लगातार दौड़ता हुआ जो है वो गया, तो हम ये नहीं कह सकते मैं मूसलाधार दौड़ता हुआ गया। तो जो है ये मूसलाधार का लफ्ज जो है बड़ा स्पेसिफिक है बारिश के लिए, तो इसलिए मूसलाधार के साथ के जो तसव्वुर है वो बारिश के साथ है। तो वो भेजेगा आसमान को तुम पर मूसलाधार होते हुए, तो क्या मतलब है कि वो आसमान से तुम पर लगातार मूसलाधार बारिश बरसाएगा। इसका मादा जो है मिद्रार का, देखिए इसमें तकरार है अल्फाज का, तो दाल रा रा जो है, रा का तकरार, फिर इसमें मिद्रार में जो है फिर रा, फिर उसका रा का दो दफा रा का जो है वो तकरार है, तो दर्रा या दर्रो, दर्रन मुसलसल लगातार बहना, ठीक है ये मतलब होता है कोई लगातार चीज हो, मुसलसल हो, फिर उससे मिद्रार भी, बारिश के लिए लफ्ज मखसूस है जो है वो ना। अब इससे जो है ये मुबालगे का सीजा है मिद्रार, जिसमें अल्फाज का तकरार पाया जाए, जिसमें यानी जिन जिन हरूफ का तकरार पाया जाए, तो उस पर फिर मुबालगे का सीगा पैदा हो जाता है। तो मतलब है कि मुसलसल बरसने वाला जो है वो बादल भेजेगा, या मुसलसल बरसात बरसाएगा, पानी बरसाएगा। उर्दू में से एक लफ्ज निकला हुआ है मदारत, ये वही मीम दाल जो है, दाल रा रा जो इसका मादा है, मदारत जो है ये मतलब होता है कि जो मदार खातर मदारत कहते हैं ना, तो असल में मदारत जो है वो कोई भी अच्छी खासी नवाजिश किसी के ऊपर करना, बहुत नवाजिश की कसरत, रहमत और शफकत की और आवभगत की कसरत जो है वो मदारत कहलाती है, इसी से निकलो लफ्ज़ से। वजजिदकुम ज्यादा जो है, ज्यादा यजीदो ज्यादातर, ज्यादा करना, वजजिदकुम और तुम्हें ज्यादा करेगा, कुवतन तुम्हारी कुवत, कुवत के लिहाज से कुवतन है, तो ये हाल इन्हीं है, इन्हीं कुवत के जो जो हालत है उसको ज्यादा करेगा। इन्हीं जो तनवीन है आपको पता है कि हाल भी बताती है, जो हाल किसी चीज का हो, कुवत का हाल जो है तुम्हारी कुवत के हाल को ज्यादा करेगा, इन्हीं तुम्हें बतौरे तुम्हारी बलिहाज कुवत तुम्हें इजाफा करेगा, तुम्हारी ज्यादा जी तो ज्यादातन, ज्यादातन यही जो मस्तर है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, इला कुवतकुम, इला की तरफ, कुवतकुम तुम्हारी कुवत की तरफ, यानी तुम्हारी जो मौजूदा कुवत है उस इला है उसकी तरफ, इसका मतलब है उसमें इजाफा करेगा, तुम्हारी मौजूदा कुवत से इजाफा करेगा, तो मतलब ये कि तुम्हारी कुवत में इजाफा करेगा। वला ततवल्लव, वला और नहीं, ततवल्लव ये जो है पहला ता जो है ये कुरान में, ये ततवल्लव जहां भी कुरान में कहीं कहीं पे ततवल्लव इटसेल्फ एज इट इज इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे ये पहला ता हजफ हो जाता है और तवल्लव होता है, ये दोनों मानों के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला ता जो है सेकंड पर्सन वाला है, तुम वाला, आगे है तवल्ला, जो तवल्ला मुंह तवल्लियन, मुंह मोड़ना, मुंह रुख पीठ फेरना, मुड़ जाना, मुंह मोड़ना, तो ना तुम मुंह मोड़ो वला और ना ततवल्ला तुम फेरो अपनी पीठ को, मुंह मोड़ो, तो जाहिर है यहाँ पे जो है वो एक पैगंबर अपनी कौम को दावत दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उस अल्लाह की बंदगी से ना मुंह मोड़ो, ये बाबे तफावल होता है, तवल्ला जो तवल्ला तवलियन जो है जो है मुंह मोड़ना, मुजरिमीन मुजरिम बनते हुए, मुजरिम बनते हुए, मुजरिम बनकर या मुजरिम होते हुए तुम जो है अल्लाह की बंदगी से मुंह ना मोड़ो, इन दो आयात का तर्जुमा पढ़ दे, तीन आयात।
और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। इसने कहा है, बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा इसके सिवा नहीं है, तुमने महज झूठ घड़ रखे हैं। ए बरादराने कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो इसके जिम्मा है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अकल से जरा काम नहीं लेते? और ए मेरी कौम के लोगो, अपने रब से माफी चाहो, फिर इसकी तरफ उलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरिमों की तरह मुंह ना फेरो।
जज़ाकअल्लाह। अब ये नई जो है वो अब कसस अंबिया में जो पूरा हम पढ़ते जो पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर नई कहानी है ये, हजरत आद ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की आद की कहानी है, और उनमें सॉरी जो है बताया गया है कि हजरत अल्लाह ताला ने आद की कौम की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, और इसके बारे में हम पहले सूरह आराह में भी पढ़ाए थे कि ये अरबों की कदीम तरीन जो है वो कौन थी, जो बिल्कुल जजीरतुल अरब में इसके बारे में हर कोई से जानता था कि किस तरीके से ये बिल्कुल मादूम हो गई थी, तो इनका नाम जो था आद, इनका जद आला जो था उनका उनकी तरफ मंसूब था, तो ये फिर जब नूह अलैहिस्सलाम की बात जो है वो जब उनके बेटे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैले, तो फिर जो है उन्हीं में से एक किसी बड़े जो है वो कौम के किसी बड़े जद्याला की तरफ जो है इसका नाम मंसूब किया, इस कौम का, ये बड़ी बड़ी साहिबे कुव्वत, साहिबे इक्तदार और बड़ी टेक्नोलॉजी रखने वाली कौम थी और बड़े जोरावर थे, और इन्होंने फिर अरब से बाहर निकल कर भी शाम के अंदर और मिस्र और बाबल की तरफ बढ़े और बड़ी बड़ी हुकूमतों की बुनियादें रखी इस कौम ने वहां पे, तो अरब इन बाशिंदों को उमम बायदा बायदा हलाक हो जाने वाली कौमें एक्सटेंट नेशंस में शुमार करते हैं, या जो है वो फिर इनके जो ये असल में तो अरब आरबा थे, असल अरब थे, खालिस अरब थे, यानी अरब आरबा, और उसके मुकाबले में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अरब मुस्तारबा, जो वो अरब जो नेचुरलाइज अरब हैं, जो अरबनाइज अरब हैं, जो असल अरब नहीं थे लेकिन अरबों के अंदर आके फिर वो अरब बन गए, वो ये फर्क करते थे अरब इनके अंदर, जो है वो इनकी मुख्तलिफ जमातों के अफराद जो थे, ये अरब आद समूद तसम और जदेस, ये लोग जो थे मुख्तलिफ इनके कबीले थे। तो ये जो मुस्तशरिकीन है उन्होंने इनको सिमेटिक नेशंस में, ये जो सामी अकवाम के अंदर शामिल किया। सामी से मुराद होते सिमेटिक नेशंस वो है जो हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के से आगे चली गए, जो वो कौमें सिमेटिक नेशंस कहलाती हैं। और इनको कुरान मजीद ने आदे उला कहा, ये पहले आद हैं, क्योंकि एक आद जो थे वो दूसरे भी थे, जिसे मैंने कहा था कि आद वो आद अमालका कहलाते थे, और कुरान मजीद में इनको आदे इरम भी कहा है, जो है कुरान दूसरी जगह पे, यानी इनके कई नाम जो है इस तरीके से जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुअर्रिखीन के नजदीक इनका जमाना 3000 कबल मसीह का है, तकरीबन आज से कह सकते हैं कि आज से तकरीबन 2500 साल, 5500 साल पहले जो है ये लोग वहां पे कौम आबाद थी, और ये यकीनी तौर पर कौम नूह के बाद जो है ये सरजमीन पर जो है वो आबाद हुई है। कुरान की रूह से इस कौम का असल मस्कन जो था एकाफ कहलाता था, और ये जो हम इसको भी पढ़ाए एकाफ कहला के ये आबाद थे। ये हिजाज और यमन और जमामा के दरमियान में जो एम्प्टी क्वार्टर है, रुबल खाली सहरा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, मूविंग डेजर्ट है, जो उसके जनूब मगरिब का एक जो कोना है उसमें ये जो है आबाद थी कौम। लेकिन जाहिर है अब जिस सारे का सारा सहरा है और रेत के अलावा यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि उनकी आबादी अरब के सबसे बेहतरीन हिस्से हजर मौद और यमन में खलीज फायर के सवाइल से लेकर हुदूद इराक तक वसी थी, और यमन के दारुल हुकूमत था, एक जो है ख्याल ये भी इसके बारे में किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अहकाफ का इलाका जो है, ये एकाफ का इलाका भी है हजरत हजर मौत, और यहाँ पे इनके इलाके के अंदर अब भी एक जगह है जो हूद अलैहिस्सलाम की जो है वो कब्र जो है के तौर पे मशहूर है। ये वही नक्शा है लेकिन जो है ये इंग्लिश के अंदर है। कौम आद जो थी एक बुतपरस्त कौम थी, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह की कौम की तरह ये भी सनम परस्ती, यानी ये बुत परस्ती करते भी थे और बुत बनाते भी थे, ये दोनों काम जो है करते थे, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। और कुरान के दूसरे मकाम से हमें मालूम होता है कि ये बड़े गैर मामूली कौम थी, जैसे मैंने कहा बड़े देव हैकल थे, कवि हैकल थे, और जब किसी पे गिरफ्त करते तो बड़ी सख्त गिरफ्त करते थे, और इससे इनका जो है जाहिर है जब इन्होंने हुकूमतें कायम की हैं तो जाहिर है बाकी दूसरी आबादियों को इन्होंने बहुत जो है जाहिर है जेरदस्त किया, और इससे फिर इनमें ताकत का एक जोम पैदा हो गया था, और ये जाहिर है इन बड़े इलाकों के अंदर और खुशहाल तरीन इलाकों के अंदर इनकी हुकूमतें कायम हुई, तो ये बड़े खुशहाल थे और मुतमदन थे, और इन्हें खास तौर पर जो टेक्नोलॉजी हासिल थी वो फन तामीर में थी, उनमें बड़ी दस्तरस हासिल की थी, और ये बड़ी बड़ी शान शौकत के महल जो है और किले तामीर करते थे, और पहाड़ी दरों में या बुलंद टीलों पर जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें, यादगार इमारतें बनाते थे, उनको काट कर जो है ये काम जो करते थे। तो कौम आद ने अपनी मुमलकत की जो सत्वत और जबरत जो थी, जबरूत जो था वो बिल्कुल इस कदर उनके अंदर ये छाया हुआ था उनके खुमार और इसका कि हम बहुत बड़े देव हैकल भी हैं, हमारी ये तरह की हुकूमत भी है, शान शौकत भी है, तो उन्होंने इस गुरूर के अंदर और तकबर के अंदर जो है अल्लाह ताला को बिल्कुल जो है भुला दिया था, और ये गुरूर जो है इसकी बना पर उन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत का जो है वो इनकार किया। अब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी वही दावत रखी जो नूह अलैहिस्सलाम ने रखी थी, अल्फाज भी बिल्कुल कमोबेश वही है, ऐ बरादरान कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और याद रखो कि यही जो दावत है और यही जो कलमा है इंसान की दुनियावी भी और उखरवी फलाह का जो है जामिन है, और इसको छोड़ देने के नतीजे में इस दुनिया के अंदर भी जो है और आखिरत के अंदर भी अजाब अल्लाह ताला के जो है तुम्हारा पीछा करेगा। उन्होंने फरमाया, उन्होंने यही कौम को बताया कि अल्लाह को अपना आका मानो, और ये यकीन जानो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई आका नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई हकीकी हाकिम नहीं है, उसी की बंदगी और इताअत में जिंदगी गुजारने का अहद करो, और उसी इसी फिर अहद की तकमील के अंदर लग जाओ और उसी की इताअत के अंदर जिंदगी गुजारो। ये वो पैगाम है जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी कौमों को दिया है, तुम अल्लाह ही की मखलूक हो और उसके साथ किसी को शरीक जो है मत करो, ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह ताला के साथ किसी को जो है शरीक करना, और से यही नहीं है बल्कि इस जो है शिरकत के जुर्म को, अल्लाह ताला के साथ जो है ये शरीक करने का जुर्म है, इसको नस्बत अल्लाह ताला की तरफ देना एक और बड़ा जुर्म है। तो तुम इस तरीके से दो जुर्मों का जो इंतकाब जो वो कर रहे हो, इंतकाब कर रहे हो। अब उन्होंने दलील अपनी सदाकत की दलील के तौर पे क्या चीज पेश की है कि वही बात है जो हर दौर में दाइयान हक अपनी कौम से कहते रहे कि हम जो है ये जो काम कर रहे हैं, ये जो दावत दे रहे हैं, ये जो मुशक्कत कर रहे हैं, ये जो हम तुम्हारे जो है वो हमारे साथ जिस जिन मुश्किल और अजियतों का सामना तुम्हारी कर रहे हैं, इस पे हम तुमसे कोई सिला नहीं चाहते, हम जो है इसमें कोई हमारा जाती मफाद नहीं है, ये हमारा कारोबार नहीं है। तो ये तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया और उन्होंने भी जो है यही किया। असल में जो कौमों की इसलाह का काम होता है दुनिया में, ये सबसे कठिन और सबसे नाजुक काम होता है। इसके लिए सिर्फ मेहनत ही दरकार नहीं होती बल्कि बड़े शदीद खतरात से जिंदगी को गुजारना पड़ता है। अपने जो है वो बेगाने हो जाते हैं, अपने घर वाले बीवी और बच्चे और जो है दीगर रिश्तेदार जो है दुश्मन बन जाते हैं। इंसान की जो इज्जत होती है बड़ी जो है वो इस ये काम करने से पहले किसी मुआशरे के अंदर वो बड़े आला मकाम पे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो मुआशरे में बिल्कुल एक जलील होके रह जाते हैं। जलील इस माने के अंदर कि वो इज्जत जाती रहती है और लोग जो है वो बातें करते हैं उनके ऊपर, जिंदगी खतरात का शिकार रहती है और ताने और तशनी और गालियां सुननी पड़ती हैं, और जो है ये बड़ा जान जान गुसल जो है वो काम है और बड़ा मुश्किल मरहला है। और ये सारे काम जो है ये जो करने ये जिनको सामना करना पड़ता है ये बगैर किसी मुआवजे के, यानी कोई हम मुआवजे से नहीं चाहते और इस पर किसी अजर की जो है तालिब नहीं होते। तो तुम फिर जरा अकल से काम लो कि इतनी ज्यादा मुश्किल के बावजूद अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा इस मिशन के लिए वक्त कर दे तो फिर जरा सोचो कि उसके पास यकीनन कोई ऐसी बुनियाद और ऐसी जमीर की कोई इत्मीनान की कोई यकीनन कोई ऐसी वजह है जिसकी बिना पे वो अपना सारा आराम और ऐश जो है वो तज दिए जा रहा है, और उसे अपनी दुनिया की बनाने की फिक्र नहीं है बल्कि उसे बेपरवाह होकर अपने आप को मुश्किल के अंदर और अजियतों में डालकर जो है वो फिर भी लोगों की दुश्मनी लेकर भी वो फिर उसी पैगाम के ऊपर जो है वो पैगाम पहुंचाने के अंदर और इस बात का हरीस है कि लोग जो है वो पैगाम मान ले, वो डटा हुआ है। तो तुम जरा सोचो तो सही कि कोई ना कोई तो इसके ऊपर तुम अकल से काम नहीं लेते, यही बात यहाँ पे की अफला ताकि तुम अकल से काम ले, इस पे जरा सोचो। ये एक दलील के तौर पर अपनी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सदाकत की दलील के तौर पर इस कोई बात को जो पेश किया है, अगर हक और सच जैसी इत्मीनान बख्श ताकत जो है इसके पीछे ना हो तो फिर इन सब मसायब और मुश्किल से बेपरवाह होकर इस गर्दाब में क्यों कूदता, ये बात जो है उनको जो बताई गई है। और एक अहम बात तीसरी जो बताई गई है वो तौबा और इस्तग़फ़ार की तरगीब जो दी है जब हूद अलैहिस्सलाम ने, तो ये भी जो है असल में हलाकत अकवाम और इस्तग़फ़ार का वो बाहमी तल्लुक है जो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की कहानी और कसस के अंदर जो है ये बात पोशीदा है और हर जगह पे मौजूद है। दावत तौहीद के बाद हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के हुजूर तौबा और इस्तग़फ़ार की दावत दी और कहा कि अगर तुम इस शिर्क से बाज आ जाओ और अल्लाह के दीन पे अमल पैरा हो जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें जमीन व आसमान के दरवाजे और अपनी रहमतों का जो है दरवाजे खोल देगा तुम्हारे ऊपर, और पानी भी देगा और जो है प्रोड्यूस भी देगा और माल औलाद भी देगा और तुम्हारी कुव्वत के अंदर इजाफा करेगा, तुम्हारी चाहे ये सियासी कुव्वत है या ये तुम्हारी जिसकी बुनियाद पे तुम अपना इक्तदार को जो है वो आगे बढ़ाते हो, या फिर तुम्हारी ये फौजी कुव्वत है जिसके ऊपर जो है मुतलकन कुव्वत की बात की गई है जिसके अंदर हर किस्म की कुव्वत जो है शामिल है। और ये वही बात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाई गई इस पहले रुकू के अंदर कि वनस्तगफिरु रब्बकुम थुम्मा तूबू इला जुमत्तेकुम अतान हसना इला अजलिन मुसम्मा व युति कुल्ले ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, कि अगर तुम अपने रब से माफी चाहो उसकी तरफ माफी उसे मांगो और उसकी तरफ वापस पलट आओ तो वो तुमको एक खास मुद्दत वक्त तक इस जमीन में बेहतरीन मता अता करे। यही वो बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो कुरैश मक्का को ये बात बताई, नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात बताई, और आप बता रहे हैं देखें कि हूद अलैहिस्सलाम भी यही बात कह रहे हैं। और इससे मालूम हुआ कि आखिरत ही में नहीं इस दुनिया में भी कौमों की किस्मतों का उतार चढ़ाव अखलाकी बुनियादों पे होता है। इसी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने फरमाया और अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये मुसलसल मिसालें जो बयान दी है, इससे यही मालूम होता है कि इस आलम पर जो अल्लाह ताला फरमानरवाई कर रहा है वो अखलाकी असूलों पे मबनी है। कौमों का उरूजो जवाल जो है वो अखलाकियात की बुनियाद पे जो है वो हो रहा है, और न कि सभी असूलों पे जो अखलाको अखलाकी खैर शर के इम्तियाज से खाली हूं, यानी इस तरह के नहीं, बल्कि जब अल्लाह ताला कौमों को मिटाता है और कौमों को हटाता है तो उसकी वजूहात जो है वो तभी असूल होते हैं, वो अखलाकी असूल होते हैं, तभी असूल नहीं होते। तभी असूलों पे बेश बिलाशुबा जो कोई कौम एक जो है कोई मेहनत करती है तो अल्लाह ताला उसका जो है वो सिला उसको जरूर देता है, ये तभी असूल है। लेकिन जब अल्लाह ताला कौमों को जो मिटाता है तो जब एक खास एक आप कह लें कि थ्रेश होल्ड पॉइंट है, एक थ्रेश होल्ड लाइन है, एक उससे जब कोई कौम जो है वो आगे बगावत और सरकशी में उससे आगे निकल जाती है तो फिर उसका फैसला कर दिया जाता है। और ये बात कुरान मजीद में कई मकाम पर फरमाई गई है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम के अंदर कोई पैगंबर भेजता है तो फिर उस कौम का जो मुस्तकबिल है, उसकी किस्मत का जो फैसला है, उसके साथ जो है मुअल्लक हो जाता है। अगर तो वो कौम जो है उसको कबूल कर लेती है उस पैगाम को जो रसूल लेके आया है तो फिर अल्लाह ताला नेमतों और रहमतों के दरवाजे खोल देता है, और अगर रद्द कर देती है तो उसे तबाह डाल देता है। और इस कानून की एक शिक जो है और एक दफा ये भी है कि जो कौम दुनिया की खुशहाली से फरेब खाकर फिर सरकशी और जुल्म मासियत की राहों पर चल निकले तो फिर अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर इस दौरान उसे महसूस हो जाए अपनी गलती और वो अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़कर अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ आ जाए तो फिर अल्लाह ताला उनके हालात को बदल देता है और मुस्तकबिल में आने वाले अजाब से उनको महफूज जो है वो रखता है और उनको तरक्की और सरफराजी जो है उनके लिए लिख देता है। ये वो बात है जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी कौम को बताई, और यहाँ पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यही बात जो बता रहे हैं। और मैं का उन्होंने कालू अब उनका जो है जवाब है, असल में ये जो पूरा जो डिस्कोर्स है ये वाला कौम हूद का अलैहिस्सलाम का, तो ये दावत का एक एक पूरा खुलासा बयान किया गया कि आपने कौम को दावत दी और एक जो है उनका जवाब दिया गया है कि उन्होंने जवाब क्या दिया, यानी आप अलैहिस्सलाम की दावत का खुलासा इस रुकू में पेश किया गया है और उनके जवाब का खुलासा और अहम नुकात जो है वो पेश किए गए हैं, यानी इस वो तफसील यहाँ पे नहीं है जिस तरीके की तफसीर नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से मौजूद थी वो नहीं है। तो अब जो है जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने कौम आद ने जो जवाब दिया है हूद अलैहिस्सलाम को उसका खुलासा यहाँ पे इनायात के अंदर बयान किया गया है और उसके बाद जो है कंक्लूड कर दिया गया। कालू उन्होंने कहा, अब जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो आप जो है ये देखा कीजिए कि ये कालू के साथ तो नहीं लिखा कि ये किसने कहा है, तो जेहन में इसको ताजा कर लिया कीजिए कि ये कौन कह रहा है। कालू उन्होंने कहा याहूद कि एहूद मा जेतना बेबैना तिन मा जो है मा नहीं मा नाफिया है मा जेतना ये जा आ यजियो ये जो है या जा आ मजियो अच्छा जा यजियो है मजियतन जो है लाना या ले आना या आना इसका मतलब होता है तना जो है हमारे पास नहीं लाया तू हमारे पास बेबजना तिन एक बजना एक वाजे दलील तू हमारे पास कोई वाजे दलील तो लाया नहीं ठीक है वमा नखनो वमा और नहीं है हम और नहीं नखनो हम है और नहीं है हम बेतारे की बेतारे। अच्छा ये लफ्ज जो है इससे परेशान ना हूं ये आसान लफ्ज है ये बाजर भी तो साथ है मतलब है के मानों के अंदर जो आता है आगे है तारिकी ये लफ्ज तारिकीना है असल में तो जो है वो इजाफत की वजह से यहाँ भी आगे नून जो है वो गिर गया है तो तारिक आपको पता है तारिक तर्क करने वाले को कहते हैं तारिकीना तर्क करने वाले वही तर्जमा है वमा नखन और नहीं है हम तारिकीना तर्क करने वाले इसको ठीक है या इसके साथ जो है हम नहीं है हम तर्क करने वाले या छोड़ने वाले अहले अतना आहलेहतेना, आहलिया जो है ये इलाहुन की जो है जमा है, आहलिया तना हमारे, जो हमारे आहलिया है, जो हमारे माबूद है, उनको हम नहीं छोड़ने वाले। अन कौले का, तुम्हारे कौल से, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे कहने से थे। तू कोई बड़ी दलील तो लाया नहीं हमारे पास, वाजे दलील तो जाहिर है। अब तो ये बात तो ऐसी थी कि मैं न मानू वाली बात है, पैगम्बर ने तो पूरा हक अदा कर दी, कवील जमाने गुजारा उनके दरमियान, और जो है वो दावत का हरा सलूक भी अपनाया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई तू कोई कोई दलील तो है नहीं तुम्हारे पास, ऐसे फिर हम कैसे मान ले। अहले जो है इलाहों की जमा, वमा नखनो और हम नहीं है लका तुम्हारे ऊपर बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं, तुम्हारे ऊपर ईमान लाने वाले नहीं है। इन अगर नहीं है, नकूलो हम कहते इल्ला मगर, नहीं हम कहते हैं मगर यही के, जाहिर क्या इल्ला तरा का, इल्ला तरा का ये जो लफ्ज है ए तरा या तरी ए तरान, ये रेर इस्तेमाल होता है कुरान में, गलबा पाना, छू जाना, लाहा कोना, कई सारे ए तरा इल्ला, हम तो यही कहते हैं कि बात कोई इसके सवाल नहीं है, मगर जो है ए तरा का तुझे मुबतला कर दिया है तुझको, या छू लिया है तुझको, या गलबा पा लिया है तुझको, या लाहक हो गया है तुझको, कोई भी बात कह ले, कोई भी कह ले, और आगे आगे पढ़ेंगे तो उसकी समझ आएगी कि वो लाहक क्या क्या किस चीज ने गलबा पाया है। बादो किसी बाज यानी किसी चीज ने, अहलेतेना हमारे इलाहों में से किसी बाज ने, बिसुएन बुराई से, यानी तुझको मुबतला कर दिया है किसी बुराई या खराबी में, हमारे अहल्या में से किसी ने तुझे, यानी वो कहते थे कि तू हर वक्त हमारे इलाहों की, हमारे माबूदों की बुराइयां करता रहता है, उनके पीछे पड़ा रहता है, इनकी बात न करो, हमें लगता है कि हमारे किसी माबूद ने तुमको जो है वो तुझको मुबतला कर दिया है किसी जो है वो खराबी में, किसी खबत में, किसी ऐसी चीज के अंदर जो है वो कर दिया है। तो ये उनके कहने का मतलब है।
तो
सबसे
भाई एक
बड़ा
बार भाई ये
बुराई
लब आ ले
बीमारी
हतना है
होती है,
भाई,
यहां मुराद है कि दिमागी नुकसान मुराद है, कि तुझे किसी दिमागी खराबी में मुबतला कर दिया है ये जो तू बातें करता है। ये दूसरे जगहों पे दूसरी कौमों ने कहा है पैगम्बर को कि ये हमारे माबूदों की मार पड़ गई है तुझे, तो ऐसी बात जो है, बात वही कर रहे हैं, अल्फाज दूसरे हैं, बात वही है। काला, अब देखें काला एक पर्सन के लिए, एक शख्स के लिए, तो एक शख्स तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ही है, और वहां पे वो क्या था, वो जब कौम की बात आएगी तो वो प्लूरल है, बहुत सारे, तो वो कालू आएगा, काला। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी बेशक मैं, उशहिदुल्ला, उशहिदुल्ला अज ये जो है मैं गवाह बनाता हूं, उशहिदो ये शाहिदा यशदो से गवाह बनाना, तो आगे जो पहला फर्स्ट जो हमजा है जिसके ऊपर पेश है उशहिदो, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए जो आता है वो है उशहिदो, आउज जैसे होता है, मैं जो है वो पना मांगता हूँ, उशहिदो मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह अल्लाह को, मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह को, वशहदू और तुम भी गवाह रहो, वशहदू तुम भी गवाह रहो इन्नी के बेशक मैं बरी हूं, मैं बरी हूं, मिम्मा, मिम्मा ये मेन और माँ है, उससे उससे वो जो तुशरिकून जो तुम शिर्क करते हो, तुम जो शरीक ठहराते हो उसमें बरी हूं, मिन दून ही, मिन दूने दून बगैर ही, उसके उसके बगैर, उसको छोड़कर, उसके अलावा यानी अल्लाह के अलावा, फकी दूनी पस, अच्छा ये आगे है कैद है, ये लफ्ज आगे देखें कैद है, फकी दूनी ये कैद जो है आपको पता है जो कैद उसके लिए इस्तेमाल होता है किसी साजिश के लिए, किसी मकर फरेब के लिए, मकर कैद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कैद वही है जो है, बल्कि एक लफ्ज कैदू तो जो है शायद वो बन गया है एक मतलब मुहावरे के तौर पर भी जो है वो इसी मानों के अंदर बन गया है। फकी दूनी पस तुम फरेब कर लो, तुम मकरो फरेब कर लो, जमीन सब मिलके, यानी तुम सारे मिलके जो है वो नी, अच्छा फकीदू नी मेरे साथ, मेरे साथ मकर फरेब कर लो, साजिश कर लो, गठजोड़ कर लो, जमीन सारे मिलके मेरे खिलाफ गठजोड़ कर लो। और ये वैसे तो इसका मतलब मकर होता है कैद का, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ इसकी नस्बत हो तो फिर इसका मतलब होता है अल्लाह ताला की तदबीर, जो अल्लाह ताला जो 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 भी किसी मामले के अंदर फरमाता है, तुम और फिर ला तुन जरूर ता उससे पेश उससे शुरू हो रहा है, पेश से शुरू होता है। इसका मतलब है कि ये पैसे वैसे और ना मोहलत दो मुझे ये जो है अनजरा यूनजरो इंतजारन, मोहलत देना ढील देना और ना ढील दो मुझे। इसका तर्जुमा पढ़ दे सर।
उन्होंने जवाब दिया, ए हूद अल इस्लाम, तू हमारे पास कोई सरी शहादत लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने मबूदों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे मबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद अल इस्लाम ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, इनसे मैं बेजार हूँ। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे जरा मोहलत ना दो।
जाकल्ला। अब ये कौम की तरफ से जो मुआवजे का मुतालबा जो है वो किया गया है, असल में दबे अल्फाजों के अंदर वो कहा गया है, जो बात बताई गई है कि अब गुज़श्ता आयात तो वो थी जिनमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की उलूहियत की दावत दी थी, उसको दलाइल से साबित किया था, और फिर जो है वो उनके सामने जो है अपने रवैये को, अपने अखलास को, उसकी दावत की मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, और ये आपकी दावत का भी इस बात था और आपकी रिसालत का भी जो इसमें जो सबूत था, और फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू इस्तग़फार और तौबा की दावत दी, और तुमके अगर ये करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें जो है खुशहाली अता फरमाएगा। तो आपकी कौम ने जवाब में कहा कि ए हूद, तुम हमसे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी, ये तो पूरी जो है वो मुआशर तलपट हो जाएगा, ये तो कायाकल्प है कि जो है तुम चाहते हो कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दें और एक खुदा पे ईमान ले जाए ले आए, तो इस तरीके से तो पूरी जिंदगी के तौर अतवार जो है वो बदल जाएंगी, बुनियादी नजरियात से लेकर आदाब जिंदगी, उठना बैठना, हर चीज में जो है वो तुम चाहते हो कि तुमसे हम रहनुमाई हासिल करें और हम अपने बुतों को और अपने बुजुर्गों को छोड़कर जो है किसी एक के आगे जो है बड़ाई के सामने झुक जाए, जिसे तुम कहते हो कि खुदा के आगे झुक जाओ। इतनी बड़ी तब्दीली जिंदगी के अंदर तो ये जो तुमने पेश किया है ये काफी नहीं है, तुम कोई बड़ी शहादत होनी चाहिए, कोई ऐसी शहादत जिसको देकर हम मानने पे जो मजबूर हो जाए, वो कोई चीज हमारे सामने लाओ, अगर वो नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे कहने से, तुम्हारी दावत से हम ये छोड़ने वाले जो है वो नहीं है, यानी तुम कोई बड़ा मोजज़ा लेके आओ। और हम तो ये भी कहते हैं कि जो है वो हम समझते हैं कि तुम जो हमारे माबूदों को जो कुछ कहते रहते हो हर वक्त, हमारे माबूदों की मार पड़ गई है, तुम ये जो बहकी बहकी बातें करते हो कि अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के तो एक जो है अल्लाह के ऊपर जो है ईमान ले आओ, तो ये बहकी बहकी बात ही है। तो कौम की जो है ना ये बेहुदा जो जो बातें थी ये सुनकर हूद अलैहिस्सलाम की गैरत तौहीद जो है भड़क उठी। अब ये जो ऊपर है ये खुलासा बयान कर दिया गया है उनके दावे का, उन्होंने ये कहा है जवाब हूद अलैहिस्सलाम को, और अब सारी बातें जो सारे एतराजात सारे उनका जो बयानिया था वो सुनने के बाद, जाहिर बड़ी बेहुदा बात थी जो उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से जो है वो की है, तो आपने आपकी जो गैरत तौहीद थी वो फिर भड़क उठी और आपने बड़ा वो देखें कंक्लूडिंग इररिफ्यूटेबल किस्म का जो है आपने उनके सामने जवाब रखा, तो आपने पूरे जोश और जज्बे के साथ और आपने जो है वो पूरे जलाल के साथ जो है इस बात का ऐलान किया और उन्हें चैलेंज दिया कि तुम सब मिलकर, अगर तुम समझती हो कि मैं जो है वो जो है भटक गया हूँ रास्ते से, या मुझे जो है तुम्हारे बावजूदों में से किसी की जो है वो उन्होंने मुझे खबत में मुबतला कर दिया, तो तुम सारे के सारे मिलकर अपने महबूबों के साथ मिलकर और तुम भी सारे मिलकर मेरे खिलाफ जो साजिश करनी है, जो दाव खेलना है खेल लो, और मुझे किसी किस्म की जो है मोहलत ना दो, ये जो है वो उन्होंने बात इसकी की और ये आगे बात उनकी जारी है इसके अंदर। तो मैं इन्नी तवक्कल तो बेशक मैं तवक्कल तो अल्लाह अल्लाह पे भरोसा किया मैंने, रब्बी जो मेरा रब है वह रब्बिकुम और वो तुम्हारा भी रब है, तुम मानो ना मानो वो रब तो तुम्हारा वही है, वही तुम्हें खिला रहा है पिला रहा है, तुम्हारे लिए सामान जीस्त वही मुझे सर कर रहा है। मा मिन दाबतिन इल्ला, मा नहीं है मिन दाबतिन कोई जानवर इल्ला मगर ये दाबा का लफ्ज हम काफी मतलब पड़ा है, रेंग कर चलने वाले जानवरों को दाबा कहा जाता है, मगर अब इसका इतलाक फिर जो है तमाम जानवरों के ऊपर, यानी कोई भी जानवर जो जरूरी जमीन के ऊपर जो है चलता है। हुआ आखिजुन अखजा या खिजो पकड़ने के मानों पे आता आता है, आखिर पकड़ने वाला, हुआ आखिजुन वो पकड़ने वाला है, बिनासियत हाँ दाबा जो है ये बिनासियत हा जो है आखिर में, बिना सियतहा बाजर बी मतलब साथ, आगे है नासिया पेशानी, और पेशानी के फ्रंट वाले जो ऊपर बाल होते हैं उनको भी नासिया कहते हैं और पेशानी को भी नासिया कहते हैं। हा उसकी, हा फेमिनिन का है तो कौन सा फेमिनिन है ऊपर, दाबा, और दाबा जानवर है, अगर हम उर्दू में तर्जमा करेंगे तो जानवर तो वो तो मुजक्कर में आएगा लफज, लेकिन दाबा में इटसेल्फ इसमें आखिर गोलता है, कोई सी लफ्ज के आखिर में अगर गोलता हो तो फेमिनिन होता है, इस वजह से हा आया। तो वो पकड़े हुए है, ये वो पकड़ने वाला है, या वो पकड़ के रखे हुए है उसको, उस जानवर को, हर जानवर को बिनासियत है उसकी पेशानी से या पेशानी के बालों से, ये दोनों माने जो हो सकते हैं। पेशानी ज्यादा किया जाता है, पेशानी के बाल भी कहीं पे मुराद होते हैं। इन रब्बी बेशक मेरा रब, अला सिरात मुस्तकीम, अला ऊपर सिरात मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम तो सीधे रास्ते पर है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा रब जो है भटक गया है या सीधे रास्ते पर है, मेरा मतलब इसका मतलब यहाँ पे मुफसरीन ने ये बताया है कि वो सीधे रास्ते की तरफ, जिस रास्ते पे मैं हूँ, जिस रास्ते पे मुझे अल्लाह ने भेजा है, मेरा रब जो है मुझे सीधे रास्ते पे, वो खुद सीधे रास्ते पर है, उसने मुझे उसी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दी है और मुझे चलाया है, ये बात बताइए यहाँ से मुराद है। फ इन पस अगर तवल्लो तुम जो है मुंह फेरोगे, अब देखो ये वही लफ्ज है जो वहां पे आया था तवल्ला, यहाँ पे ये भी तवल्लो है लेकिन वहां पे ये ता हजफ हो गया यहाँ पे, और कुरान में ये है बहुत सारी जगहों में हजफ हो गया, बाज में ये नहीं हुआ। अगर तुम मुंह फेरते हो फकद तो यकीनी तौर पर, अबलागतुकुम अबलाग अबलागा जब लोगो इबलागन, तो मैंने इबलाग कर दिया है, इबलाग ये उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है इबलाग पहुंचाना, तो मैंने पहुंचा दिया है कुम तुमको, तो मैं पहुंचा चुका हूं तुमको, मा और सिल तो वो जो मेरी तरफ वो जो भेजा गया, यानी उर्सिलत ये पैसे वायस है, वो जो उर्सिल तो वो जो मैं देकर भेजा गया भी ही, जिसको इलैकुम तुम्हारी तरफ, यानी जो पैगाम देकर मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूं उसको मैं पहुंचा चुका। वजस्तखलिफू है यानी वो तुम्हें वो क्या करेगा, वो जानशीन कर देगा, इस्तखलाफ कर देगा, रब्बी मेरा रब जो है जानशीन कर देगा, ये इस्तखलफा यस्तखलिफु इस्तखलाफन जानशीन बनाना, ये कुरान मजीद में एक आयत इस्तखलाफ भी है जहां पे अल्लाह ताला ईमान वालों को बताता है कि वो तुम्हें इस्तखलाफ खलीफा बनाएगा जमीन में, कब बनाएगा ये वो, इस वजह से उस आयत को जो है इस आयत इस्तखलाफ कहा जाता है, जानशीन बनाना, तो इस वजह तो वो जानशीन बना देगा मेरा रब कौमन किसी कौम को, देखिए कौमन है नकरा है, किसी कौम को, गैरकुम और जो है गैरकुम, गैर अदर देन होता है, कुम तुम्हारी, अदर देन तुम्हारे, यानी वो कोई ऐसी कौम होगी तुम्हारे अलावा दूसरी तुम्हारी जगह, तो वो जानशीन कर देगा किसी और को तुम्हारी जगह, यानी बदल देगा। वला और ना तदुर्रूनहू, आगे ये पहला जो ता है ये सेकंड पर है, तुम आगे दर्रा या दर्रो दर्रन तुम नुकसान पहुंचाना, ये जरर जो होता है जिसे, ये वही लफ्ज है जरर उर्दू में जो होता है, तो तुम ना नुकसान पहुंचा सकोगे उसको, यानी किसको, अल्लाह को, शैया कुछ भी जरा भी, इन रब्बी बेशक मेरा रब, अला कुल्ल शैइन हफीजुन, अला कुल्ल शैइन हर चीज के ऊपर, हफीजुन हफीज है निगरान है, इसका तर्जुमा पढ़ लो।
मेरा भरोसा अल्लाह पर है, जो मेरे रब भी है, जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूँ। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है।
अब ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कुव्वत ईमान और यकीन का एक नमूना जो है उन्होंने पेश किया है। तो उन्होंने जो बड़ी ही गैर मुतजरजर यकीन और ईमान के साथ और ईमान की पूरी कुव्वत के साथ जो है वो कौम आद के मुशरिकीन और उनके खुदाओं को अपने खिलाफ जो है वो साजिश और जंग के लिए ललकारा है। अब ये अभी हमने देखा है, उन्होंने कहा कि अगर ठीक है तुमने अब इनकार हतमी तौर पर इनकार भी कर दिया और मुझे ऐसे और ऐसे कहते हो तो ठीक है तुमने जो कुछ जो है वो करना है, जिसको बुलाना है मदद के लिए अपने खुदाओं को, और मिलकर तुम सब मेरे खिलाफ जो साजिश करनी है जो है वो कर लो। ये वो आखिरी बात ऐसे है जैसे कह रही है। और ये भी फरमाया कि अच्छी तरह सुन लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसलिए कि मेरा तकिया और मेरा भरोसा अल्लाह पर है, वो मेरा परवरदिगार है और वही तुम्हारा भी परवरदिगार है, तो मानो या ना मानो। और साथ ये बात भी फरमाई कि यानी ये जो मुख्तलिफ चीजें दुनिया के अंदर नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उन्होंने फरमाया कि कोई जानदार भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में ना हो। हर चीज की पेशानी उसकी मुट्ठी में है, यानी पेशानी से अब किसी को पकड़ के अगर कंट्रोल में है पेशानी, किसी चीज को कंट्रोल किया तो वो उसके कंट्रोल और उस पर जो है वो जबरदस्त होने की या उस चीज की जेरदस्त होने की एक निशानी है। किसी में मजाल नहीं है कि अल्लाह ताला के इज़्ज़न के बगैर कोई चीज मुझे नुकसान पहुंचा सके। ये मेरा ईमान है और ये मेरा अकीदा है और ये वही मेरा रब है जो सिरात मुस्तकीम की जानिब रहनुमाई फरमाता है, उसने मेरी रहनुमाई फरमाई है। तो ये बातें सारी की बातें बिल्कुल हतमी तौर पर और जो है आपने कंक्लूड करके अपनी कौम को बता दिया है। और यही वो बात है कि अल्लाह ताला पर जो मुकम्मल भरोसा है और तवक्कुल जो है एक मोमिन की वो ढाल है जिसके बल पर वो किसी भी मादी ताकत को खातिर में नहीं लाता और अपने वक्त के बड़े से बड़े जो है फिरौन और ताहूत से जो है वो टकरा जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि अल्लाह ताला के पैगम्बरों ने और रसूलों ने जो है बड़े बड़े ताहूत के सामने जाकर जो है उनसे मरूब हुए बगैर अल्लाह ताला का पैगाम मनो अन जो है ईमान की पूरी कुव्वत और इस्तेदलाल से जो है वो पहुंचा दिया उनको, और कोई जरा बराबर किसी चीज का खटका नहीं किया कि उनका कोई बाल भी कभी करेगा। ये वो तवक्कुल और भरोसा है अल्लाह ताला। और ये दाईन अल्लाह जो दावत का काम करते हैं, दीन की दावत का काम करते हैं, उनके लिए भी ये जो है वो सब सबक है और रहती दुनिया तक के लिए कि अगर ये काम करना है और अम्बिया अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलते हुए दावत का काम सर अंजाम देना है तो फिर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो रखनी होगी और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरना होगा। अब ये वो जारी है, वो कहते हैं कि तुम ये कहते हो कि मैं कोई शहादत नहीं लाया, हालांकि मैं तो इस कायनात की सबसे बड़ी शहादत जो है वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। अपनी सारी खुदाई के साथ जो है जो हस्ती कायनात के हर गोशे में और हर चीज में जो है हर जलवे के अंदर जो तुम्हें जो मौजूद है और वो उसकी मैं गवाही जो है वो दे रहा हूँ, वो सरासर हक है और तुम जो पेश कर रहे हो वो सरासर झूठ है और जो तुमने जो तस्वुरात कायम कर रखे हैं वो सारा सारा झूठ है और मैं तुम्हारे सामने हकीकत को और हक और सच को जो है बयान कर रहा हूँ। तो हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये आखिरी तंबीह की कि अगर तुम इनकार और एराज यानी हक से एराज की इस रविश पर अड़ने का फैसला कर चुके हो तो अब नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे ऊपर होगी। अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम मैं देकर भेजा गया था वो मैंने वाजे तौर पर तुम पर ये पैगाम पहुंचा दिया है और अल्लाह ताला की तरफ से जो मेरी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी है और वो हुज्जत जो है वो मैंने तमाम कर दी है। अब जब कोई भी पैगम्बर आप इशारे किनारे के अंदर या हकीकतन या बिल्कुल एक्सप्रेसिवली जो है ये बात बता दे कि मैंने हुज्जत तमाम कर दी है तो फिर जो है अल्लाह ताला वो चीज ले आता है जो उस कौम का जो मुकद्दर होती है। अब उन्होंने भी बताया कि इस इनकार और तकजीब के बाद तुम्हारे ऊपर अब अजाब इस्तीसाल आएगा, यानी कौम की अक्सरियत ने इस बार चंद थोड़े से लोगों ने तो कौम उनका इनकार कर दिया, उस दावत को झुठला दिया, तो फिर उन्होंने अब जब ये अजाब आएगा तो तुम्हारी जड़ काट दी जाएगी اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھا کھڑا کرے گا. یعنی یہ جو لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشنز ہے, قوم استبدال کا قانون جو ہے یہ حرکت میں آئے گا اللہ تعالیٰ کا, اور تمہیں جو ہے وہ نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم جو ہے وہ لے آئے گا, اور تم اپنی تمام تر ٹیکنالوجی باوجود اور تمام تر قوت کے باوجود اور شان و شوکت کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. یہ بات انہیں دو بالکل دو ٹوک انداز کے اندر کیوں گیا, تمہیں ولما اور جب جا امرونا ہمارا امر آ گیا. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو امر کہا گیا, اور نوح علیہ السلام کی قوم کے معاملے کے اندر بھی اس کو امر کہا گیا تھا. تو فرمایا نجینا, تو ہم نے نجات دی ہودن, ہود علیہ السلام کو ہم نے نجات دی. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے, معہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. برحمتن, رحمت کے ساتھ, منا اپنی طرف سے, اپنی طرف سے اپنی رحمت خاص سے یعنی بچا لیا. ونجینا ہم, اور ہم نے ان کو نجات دی, من عذاب غلیظ. دیکھیں عذاب غلیظ کا مطلب ہے کہ بڑا تھک گاڑا, جو غلظ و غلیظن بڑا تھک اور گاڑے کے معنوں کے اندر آتا ہے, سخت کے معنوں کے اندر. یعنی دیکھیں کوئی چیز بھی جو موٹی ہوگی اور گاڑی ہوگی, کوئی بھی چیز جو ہے جس کی بہت وہ پھرتا ہے, سخت بھی ہوگی. تو عذاب غلیظ کا یہ مطلب ہے کہ جو انتہائی سخت عذاب تھا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا سخت عذاب تھا یہ. وتلک عادن, یہ ہے عاد, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وتلک عادن, یہ ہے عاد. جاہدو, انہوں نے انکار کیا, بے آیات ربہم, جو ہے اپنی رب کی آیات. کذبو بھی آتا ہے, جہدو ایک اور چیز ہے, یہ بھی انکار ہے. یہ ویسے انکار ہے کہ جو کسی چیز یعنی انجانے کی بنیاد پہ نہیں انکار کیا, مجھے پتہ نہیں ہے تو میں انکار کر رہا. یہ وہ چیز ہے جس کو جان لیا, اچھی طرح جان لیا جائے اور پھر اس کا جو ہے انکار کیا جائے. تو یہ جو ہے یہ جہدو ہے, کسی کو حق دینے سے انکار کرنا, کسی کا حق دینے سے انکار کرنا بھی جو ہے جہدو کے معنی میں آتا ہے. وہ اصو, اور انہوں نے اصا نافرمانی, اصا یاسی نافرمانی کی, نافرمانی کا نافرمانی, رسولہ اس کے رسولوں کی. دیکھیں رسولوں کا لفظ آیا ہے, جو ہے رسول یہاں پہ انبیاء کے معنوں کے اندر آیا ہے. تو قرآن میں نبی اور رسول کے الفاظ اگر الگ الگ آئیں تو پھر ایک دوسرے کی جگہ پہ آ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک دونوں لفظ اکٹھے ایک جگہ پہ آ جائیں تو پھر ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ معنی ہوگا. رسول کا الگ ایک شیڈ ہوگا معنی کا, اور نبی کا جو ہے الگ ہوگا. تو یہاں پہ یعنی یہ بات بھی جو ہے فرمائی, یعنی تمام انبیاء علیہ السلام, یعنی ایک رسول بھی تمام رسولوں کی جگہ پہ ہے, اور ایک نبی بھی تمام نبیوں کی جگہ پہ ہے. ایک رسول کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے. تو یہ بھی یہ بات کے اندر بھی اس کے اندر شامل ہے. وَاتَّبَعُوا, اور انہیں اتباع کی, امرا تو اس کی یعنی امر کی, اس کی پیروی کی. کل جبار, ہر جبار کی, جبر والے کی, ہر عامر ڈکٹیٹر کی. انید اور اناد کی, یعنی جو دشمنی رکھنے والا, حق سے دشمنی رکھنے والا انید. کیا آپ کو پتہ ہے اناد جو ہے جبار جو ہے, جبر سے مبالغہ کسی کا, زبردست سرکش جو جابر جو ہے حکمران ہے, جو ڈکٹیٹر ہے. انید جو اناد رکھنے والا, جو حق سے اناد رکھتا ہے, یعنی سرکش. یہاں سے قوم عاد کے سردار, سرکش سردار مراد ہے. وہ اتبعوا, اور وہ اور وہ اتبعوا, اور پیچھے لگا دیا گیا ان کے اتبعوا. دیکھیں یہ پیسے وائس ہے, پیش سے شروع ہونے والا لفظ ہے. اتبعوا, اور پیچھے لگا دیا گیا ان کے, فی ہذہ دنیا, اس دنیا کے اندر. لانا, لعنت جو اس دنیا کے اندر جو ہے پیچھے لگا دی گئی. دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کے. یوم القیامہ, اور قیامت کے دن بھی, یعنی یہ لعنت, یہ لعنت ان کا پیچھے کرے گی. الا, خبردار رہو, جان لو. اور یہ ظاہر مخاطبین کو خطاب کیا جا رہا ہے جو وہاں پہ, یعنی یہ کفار مکہ کو خطاب کیا. ان عادن, بے شک بلا شبہ عاد نے, کفرو اپنے ربہم, اپنے رب کا جو ہے کفر کیا. الا, خبردار رہو, جان لو, بہت دل عاد, اور بہت جو ہے بعید, دور پھینک دیے گئے. عادن, عاد جو ہے کار ہے ان پر, پھینک دیے گئے دور ان پہ. قوم ہود, یہ جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی, وہ آتی نہیں, اس کے بارے میں کہا گیا. اس کا ترجمہ,
پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی, اور ایک سخت عذاب سے بچا لیا. یہ ہیں عاد, अपने रब की आयात से उन्होंने इनकार किया, इनके रसूलों की बात ना मानी, और हर जबार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फुटकार पड़ी और क्यामत के रोज भी सुनो, आद ने अपने रब अपने
आद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए आद, हूद की कौम के लोग। तो ये जो है उसका था, ये कौम में आद की अब सरकशी का अंजाम बता। जैसे मैंने कहा कि पूरा रुकू, पूरा डिस्कोर्स जो है ये हजरत आद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत है कौम आद को, फिर उनका जो है वो जवाब है, और उसके बाद फिर कंक्लूजन है। ये पूरे का पूरा जो है यहाँ पे एक रुकू के अंदर जो है बता गया, और यहाँ पे आप इस हिस्से के अंदर उनका अंजाम बताया गया है कि जो है वो हमें इन्हीं से पता चलता है कि जो कौम आद थी उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम की रिसालत को कबूल नहीं किया, अपने कुफर और शिर्क पर डटे रहे। तो फिर अल्लाह ताला का कानून जजा जो है वो हरकत में आया, और कौम आद पर एक अजाब जो है एक हद से गुजर जाने वाली संदो तेज हवा की सूरत में है, जिसे कुरान मजीद में जो है वो तीन मुख्तलिफ जगह नामों से फरमा, एक जगह पे कहा कि वो रीहिन सरसर जो थी वो संदो तेज हवा थी, एक जगह पर तो फरमाया कि रीहल अकीन ये जो है बांझ कर देने वाली बेबरकत हवा थी जो बिल्कुल जो है, तीसरी जगह पर फरमाया कि रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, ये एक ऐसी हवा थी जिसके अंदर बड़ा शदीद दर्दनाक अजाब था। ये जो है वो तीन अजाब अल्लाह ताला ने भेजे, और हमें कुरान मजीद के मुताबिक से पता चलता है कि जब जो है वो इस कौम के ऊपर जब अजाब आया तो सरमा के बादल जो है वो रौद और बर्क बिजली और उसके साथ बिजली के साथ और कड़क के साथ नमदार हुए, और बाद सरसर आंधी और तूफान बनकर जो है बस्ती पर टूटी, और जो 7 दिन 7 रातें और 8 दिन उनका चलती रही, जिससे मकान गिर गए, उनकी छतें उड़ गई, दरख्त जड़ों से उखड़ कर कहीं से कहीं जा पड़े, और हवा तुंद तेज होने के साथ साथ बिजली थी ऐसी जहरीली थी आदमी की नाक में दाखिल होकर उनको गली सड़ी हड्डी की तरह ले जाकर के रखते थे।
यार किसी भाई का माइक म्यूट नहीं हो, म्यूट
अजहर भाई का माइक, अजहर भाई का माइक ऑन है, इनको कहें म्यूट कर देंगे, प्लीज अजहर भाई म्यूट कर दीजिए।
तो मैं आज के जो बड़े बड़े जो अपने आप को तरुमंद कवि हैकल लोग जो समझते थे, अब वो अपनी जिस्मानी कुवतों के घमंड में सरमस्त थे और सरकश थे, तो वो ऐसे पड़े थे कुरान मजीद ने नक्शा खींचा है दूसरी जगह पे, जैसे बड़े बड़े जो है खजूरों के तने जो है वो जमीन पे गिरा दिए गए, हजारों लाखों लाशें जो है गली ढेर गली के गली में और जो है गली कूचों के अंदर और हर जगह के ऊपर जो है वो उनके ढेर लगे हुए थे, मकानों के अंदर दबी हुई थी लाशें, और हवा से इतनी शदीद हवा थी कि हवा से उड़कर पहाड़ों और दरख्तों से वो लाशें जो है वो टकराई हुई थी और जो है वहां तक फैल गई थी। ऐसी शदीद जो है बुरा अंजाम हुआ इस कौम का, कौम आद का, जिन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसकी आयात का इनकार किया और उसके भेजे हुए रसूलों को छुटलाया, ये दो जरायम थे, और इत्तेबा भी किया साथ, ये भी बताया था कि ताकि लोगों को मालूम हो जाए, दुनिया के लोगों को इत्तेबा भी किया, तो किसके तबके का किया, जिसे कुरान मजीद ने जब्बार और अनीज जो है वो कहा है, यानी हर वो शख्स जिसके हाथ में डंडा है, उसके पास कुव्वत है, जो ताकत के जोर से लोगों से बात बनवा सकता है, उनको जो झुक झुक कर सलाम किए, जो लोगों के जमीर खरीद सकता है, उनके जो है उनको अपने जमीर बेचे, और अहद व मनसब की चाबियां जिनके हाथ में होती हैं उनको जो है उनके आगे ये लोग झुकते रहे, और जो अपने मफादात का तहफ़ करने के लिए हर तरह के लोगों का इस्तेसाल रवा रखते हैं, यही ताहूत है, और इनसे बढ़कर फिर कौन दुश्मन हक हो सकता है, जो हक की दुश्मनी जो कर सकता है। इन लोगों हक दुश्मनों ने हक के आगे ये कौम जो थी, ये अवाम जो थी कौम आद की, ये जो है वो झुकती रही, इनके ये जराए बताए गए हैं। तो बताया गया कि अपने अकल से काम लो, और अपनी जो है ये इन लोगों के पीछे सरकश हुक्मरानों के पीछे जो लोगों को इस्तेसाल करते हैं और तुम उनके पीछे नारे लगाते हो, ये उस कौम का जुर्म था जो जो है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया। और इस हवाले से फिर जो है आखिर में इनको प्रेश को तंबीह की गई है कि देखो कौम आद के ये जराइम थे, जिनने इन जराइम ने उन्हें हर किस्म की खूबी से बिल्कुल खाली कर दिया था, और अल्लाह का दीन उनके लिए बिल्कुल अजनबी चीज बन गया था, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین اور یہ اس کی تعلیمات ہماری زندگی سے کسی صورت میں میل نہیں کھاتی. تو اللہ تعالیٰ پھر جب یہ کوئی قوم فیصلہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ زمین پر ایسے لوگوں کو پھر گوارہ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قوم اس نہج پر پہنچ جاتی ہے تو اس قوم کو پھر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, اور اس کی تباہی کی داستان پھر اللہ تعالیٰ عبرت انگیز بنا کر جو ہے دنیا کے اندر رکھ دیتا ہے, اور پھر لعنت ان کے دائیں اور بائیں چلتی ہے, اور قیامت کے دن لعنت کا مرکز جہنم جو ہے ان کی جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ریاض باللہ, اب دیکھیں کہ کتنے سخت الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے, پھر فرمایا کہ اے مشرکین مکہ اور دنیا کے لوگوں تم بھی کان سن کر سو لو کہ جس قوم عاد کا انجام تم نے ابھی سنا ہے, جن کے کھنڈرات تمہیں ہمیشہ دعوت نظارہ دیتے ہیں, اور انہوں نے اپنے رب کا جو ہے وہ کفر کیا تھا اور رسولوں کو جھٹلایا تھا, اللہ کا غضب ان پر عذاب کی صورت میں ایسے برسا کہ ان کو نیست و نابود کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور اس کی لعنت کے مستحق ٹھہرے. تمہاری بھی تو وہی روش ہے, یعنی کفار مکہ کی, مشرکین مکہ کی. اگر کوئی دیدہ عبرت نگاہ ہے تو پھر اس قوم کے انجام سے تمہیں سبق سیکھنا چاہیے. تو دیکھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم ترا کیف فعل ربک بعاد, تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ یعنی یہ وہ جو اوپر جس کا ہم پڑھا ہے, وہ اما عاد فہلکوا بریح صرصر عاتیہ, یعنی ایک بڑی شدید طوفانی آندھی آئی جس نے جو ہے وہ 7 دن اور 8 راتیں ان پہ چلتی رہی اور تباہ کر دیا. فرمایا دوسری جگہ پہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر, عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو پھر کیسا تھا میرا عذاب جو ان کے اوپر آیا, اور کیسی تھی میری تنبیہات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے مطیعوں پر بردار بنائے, اللہ تعالیٰ رسولوں کا اتباع کرنے والا بنائے, اور رسولوں کی تعلیمات کے اوپر چلنے والا بنائے, اور ان تعلیمات کو آگے معاشرے کے اندر ان کی اقامت کرنے والا بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم.